भक्त वृंद की जाय, समवेत भक्त वृंद की जाय, श्री श्री गुरु गौरांग की जाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध आठवां अध्याय। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 27। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा आरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय। नमो किंचन वित्ताय। नमो निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय। निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय। निवृत्तगुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वेत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः
नमो किंचन वित्ताय
नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः माताजी नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। namo kinchana vittaya nivritta guna vrittaye atma ramaya shantaya kaivalya pataye namaha. तो ऐसे बार बार उच्चारण करने से क्लास के अंत तक ये श्लोक कंठस्थ हो जाना चाहिए. सारे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कंठस्थ हो जाएंगे. नमः नमस्कार है अकिंचन वित्ताय निर्धनों के धन स्वरूप को, निवृत्त गुणवृत्तये प्रपंचों से सदा परे आत्म आरामाय आत्म तुष्ट को, शांताय परम शांत को, कैवल्य पतये अद्वैतवादियों के स्वामी को नमः प्रणाम है. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. अनुवाद: मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ. आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है. आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी हैं. तात्पर्य: यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है. अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता. जीव जो कुछ त्याग करता है वह और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है. एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है. एक नौकर अधिक अच्छे काम के लिए अपना काम छोड़ता है. इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है. श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया. सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे. ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे. लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके. भक्तगण सामान्यतया संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोष हैं. श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है. उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था. उसे एक जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया. अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया. अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ न हो. वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता क्योंकि वह पहले से ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है. लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है. क्योंकि भगवान ही भक्त का वास्तविक धन होता है। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा वह ऐसे स्थानों में न पड़ा होता। यह विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्म तथा पदार्थ के अंतर दिखता है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु का आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे, आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद उनके भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। भौतिक प्रगति के इस प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने में से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण है कि चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास में शक्ति का अपव्यय, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितने ही कम भौतिक प्रतिफल होंगे, उतना ही अधिक अवसर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो जाएगा। भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उनके सारे कर्म इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से रागविहीन होते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधन भी दिव्य है, और जो इसे ठीक से जान लेता है, वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप है, और न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ माया के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों के धन हैं और भक्तगण भगवान के धन हैं, अतएव भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह सीधा साधा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिथित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा कल्पना के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता, अतएव वे आत्मा राम या आत्म तुष्ट हैं। आत्मा राम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। तात्पर्य को दोहराइएगा। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है। हर एक श्लोक न केवल आध्यात्मिक ज्ञान और तत्वों से भरा हुआ है, परंतु भक्ति भाव से भी भरा हुआ है। भगवान के भक्त जो होते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में कहते हैं, संसार को त्यागते हैं तो केवल भगवान की सेवा के लिए त्यागते हैं, अन्यथा नहीं। ये संसार में हम देखते हैं कि त्याग और भोग ये दो द्वंद्व हैं। व्यक्ति किसी एक चीज का त्याग करता है किसी श्रेष्ठ वस्तु के प्राप्ति के लिए, ताकि उस श्रेष्ठ वस्तु का वो और अधिक भोग कर सके। किसी एक भोग का त्याग करता है श्रेष्ठ भोग को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से भोग और त्याग के चक्र में व्यक्ति सदैव पड़ा रहता है, परंतु न तो वो भोग में और न त्याग में वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि ये दोनों भी उसके स्वरूप नहीं है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो नित्य रूप से कृष्ण का दास है। तो जब तक जीव कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, तब तक वो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसके जीवन में इस प्रकार की स्थिरता नहीं आएगी। वो सदैव भोग और त्याग में भटकता रहेगा। यहां श्रील प्रभुपाद जी षड गोस्वामियों का उदाहरण देते हैं। षड गोस्वामियों ने बहुत कुछ त्यागा। षड गोस्वामी अष्टकम में हम सुनते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वादीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताप्ति लहरी कल्लोल मग्नौ मुहु वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। षड गोस्वामियों ने बहुत कुछ त्याग दिया, त्यक्त्वा तूर्णम आसानी से बहुत ही जल्दी शीघ्र ही त्याग दिया, उनको कठिनाई नहीं हुई त्यागने में। किस भावना से त्यागा? तुच्छवत। जिन चीजों को उन्होंने त्यागा उनको तुच्छवत बहुत ही तुच्छ समझा। वो तो बड़े बड़े मंत्री थे, जमींदार थे इत्यादि, तो उनके पास तो बहुत कुछ था। अशेष मंडलपति श्रेणी, ऐसे ऐसे उच्च कोटि के मनुष्य समाज में वो घूमते फिरते थे, तो ऐसे मंडलपति श्रेणी इसको उन्होंने पूरी तरह से अशेष उन्होंने पूरी तरह से इसको त्याग दिया। किस लिए त्याग दिया? भूतवा गण दीन गण ईश कहो, जो दीन गण है, जो बद्ध जीव है इस संसार में, इनकी रक्षा करने के लिए। किस प्रकार की रक्षा करने के लिए? उनके आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करने के लिए। करुणया, उनके ऊपर करुणा दिखाने के लिए। तो ऐसे बद्ध जीवों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए उन्होंने कौपीन कंथ आश्रितो अपने मूल्यवान रेशम के वस्त्र त्याग दिए और क्या धारण किया? कौपीन और कंथा। कंथा मतलब जो कंबल होते हैं, जो फटे हुए कंबल, ऐसे वस्त्रों को उन्होंने धारण किया। लेकिन ये त्याग तो दिया उन्होंने, लेकिन ये सब त्याग कर कौन सी श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति उन्होंने की? गोपी भाव रसामृत अवधि। गोपी, वृंदावन के गोपियों का जो प्रेम का भाव है, वो भाव क्या है? ये तो रस के अमृत का सागर है। अवधि मतलब सागर, रसामृत अवधि, और ऐसे सागर में वो तैर रहे थे। लहरी कल्लोल मग्नौ, मग्न थे ऐसे सागर के लहरों में। लहरी कल्लोल, छोटे लहर बड़े लहर, और बार बार इसमें डुबकी लगाते थे, बल्कि इसी में थे मुहुर। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल हो, तो ऐसे षड गोस्वामियों के चरणों में मैं नमन करता हूं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ त्यागा है संसार में, लेकिन वो तो मूर्ख नहीं थे, सबसे बुद्धिमान थे। क्योंकि उन्होंने इतना कुछ त्यागा, तो ऐसे कुछ उसके बदले में उन्होंने प्राप्त किया जो कि अतुलनीय है। सबसे मूर्ख भक्त नहीं है जो कि संसार को त्यागते हैं, सबसे मूर्ख तो वो है जो कि नास्तिक है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े वस्तु भगवान को त्यागा है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो नास्तिक ही सबसे बड़ा त्यागी है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो थोड़ा कुछ त्यागते हैं, थोड़ा अपना धन त्यागते हैं, थोड़े 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 10 करोड़ त्यागते हैं। परंतु जो नास्तिक होते हैं वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण को त्यागते हैं, तो इनसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? तो खैर, ऐसे जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो वो कभी दरिद्र नहीं होते। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे पाया जाता है कि भक्त गरीब होते हैं, दारिद्र की अवस्था में होते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पास एक गुप्त या गुह्य खजाना होता है, और वो खजाना है भगवान के चरण कमल। क्योंकि भगवान के चरण कमल उनके पास हैं, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वास्तव में वो सबसे बड़े धनी कहलाते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है भौतिक दृष्टि से उसको अकिंचन कहते हैं। जिसके पास भौतिक धन नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, कोई ऊंचा स्थान नहीं समाज में, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं, जिसने भौतिक योजनाओं को बनाना त्याग कर दिया वो अकिंचन है। लेकिन ऐसे अकिंचनों के पास बहुत बड़ा धन है और वो है श्री कृष्ण। इसलिए कुंती महारानी यहां पर भगवान श्री कृष्ण को अकिंचन वित्त कह के संबोधित करती हैं। नमः अकिंचन वित्ताय, वित्ताय मतलब अकिंचन वित्त को नमः, मैं नमस्कार करती हूं। भगवान के अलावा भक्तों के पास और क्या है, और क्या चाहिए भी भक्तों को, और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में सनातन गोस्वामी की एक छोटी सी कथा बताते हैं कि एक बार जब एक व्यापारी सनातन गोस्वामी के पास आए कुछ आशीर्वाद मांगने के लिए। जो कर्मी होते हैं, जो भोगवादी होते हैं, वो कभी आते भी हैं अगर किसी संत के पास, साधु के पास, तो किसी भौतिक प्राप्ति के लिए आते हैं। तो सनातन गोस्वामी के पास आए कि कृपया आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि किस तरह का आशीर्वाद चाहिए तुम, क्योंकि भगवान के भक्त जो है उनका आशीर्वाद बड़ा अलग ही होता है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद के पास एक रेलगाड़ी में एक सज्जन आए उनके परिवार सहित, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको आशीर्वाद दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझ गए कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या है, इसको भक्ति की आशीर्वाद नहीं चाहिए, उसको कुछ भौतिक चाहिए, चीज चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सब बच्चों सहित मेरे शिष्यों की तरह बन जाएंगे। उनके गहरे वस्त्र पहने हुए शिष्य वहां बैठे थे, सर मुंडवाकर वगैरह। तो आदमी तो बहुत घबरा गया, जल्दी से वहां से निकल गया और आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आया। तो सनातन गोस्वामी के पास ये आए, तो सनातन गोस्वामी ने पूछा क्या चाहिए आपको। अरे मैंने सुना कि आपके पास एक चिंतामणि है, पारस पत्थर है आपके पास, तो मैं वो चाहता हूं। अच्छा, पारस पत्थर चाहते हैं, तो ठीक है, देखिए वहां कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है, कूड़े के स्थान में वहां पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं उस समय, तो वहां जाकर वो पारस मणि जो है उठा ली और बड़े उत्तेजित होकर घर चला गया और हर चीज को सोना बनाने लगा। जिस वस्तु को वो पारस मणि स्पर्श करे वो सोने में परिवर्तित हो जाए। तो बड़ा खुश हो गया ये व्यक्ति, सब जगह सोना ही सोना, सोना ही सोना। लेकिन आप तो जानते हैं कि जिस प्रकार भूखे को अगर आप केवल भोजन के अलावा कुछ देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा, उसी प्रकार से ये धन सोना आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ये व्यक्ति इतना धन पाने के बाद भी असंतुष्ट था, और ऐसे असंतुष्टि की अवस्था में वो सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया कि अरे ये जो सनातन गोस्वामी हैं, उन्होंने मुझे ये पारस मणि दिया, लेकिन उन्होंने ये कचरे के डब्बे में रखा हुआ था। इसका मतलब है कि उनके पास उस पारस मणि के अलावा और भी कोई मूल्यवान वस्तु होगी, तो क्यों ना उनके पास फिर जाकर ये और भी मूल्यवान वस्तु प्राप्त कर लें। तो शीघ्र ही फिर से वृंदावन आए, सनातन गोस्वामी के पास आए कि महाराज आपने तो पारस मणि जो है वो तो कचरे के डब्बे में डाला था, इसके मतलब आपके पास और कुछ चीज है जो इससे ज्यादा मूल्यवान है, वो कृपा करके मुझे दे दें। आखिर आप तो वैरागी हैं, आप तो यहाँ वृंदावन में बाबा जी की तरह वास करते हैं, आपको इन मूल्यवान चीजों से क्या लेना देना है। लेकिन मैं तो गृहस्थी हूं, व्यापारी हूं, तो मुझे इन चीजों की आवश्यकता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पारस मणि जमुना में फेंक के आना होगा। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ी मुसीबत की बात है, क्या किया जाए। तो व्यक्ति सोचने लगा कि वो पारस मणि अगर मैंने जमुना जी में फेंक दिया और फिर आके सनातन गोस्वामी ने मूल्यवान वस्तु नहीं दी तो क्या होगा। फिर खैर बड़े भारी हृदय से जाकर किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति ने जमुना जी में वो पारस मणि फेंक दिया और फिर चले आया सनातन गोस्वामी के पास। और सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, अब जबकि आपने इस पारस मणि को फेंक ही दिया है जमुना में, तो अब मैं आपको वो अनमोल रत्न देता हूं जिसके सामने यह पारस मणि तुच्छ है। और वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी मजाक मत कीजिए हमारे साथ, हमने फेंक दिया है पारस मणि, अब फेंकने के बाद अब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको प्रचार किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप समझो। फिर वो व्यापारी समझ पाए कि जो उन्होंने प्राप्त किया था वास्तव में सबसे मूल्यवान वस्तु। तो सनातन गोस्वामी ने सब कुछ त्याग किया था, पारस मणि भी त्याग दिया, लेकिन सबसे बड़ा धन उनके पास था, इसलिए इस भौतिक धन को वो तुच्छ समझते थे। वास्तव में बहुत बड़े धनी थे। उसी प्रकार से चैतन्य भागवत में हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर, श्रीधर खोला बेचा। उनका व्यवसाय था कि वो केले के पत्ते, केले आदि बेचा करते थे और बहुत कम धन प्राप्त करते थे। और जितना भी कुछ धन उनको प्राप्त होता था थोड़ा बहुत, उसका 50% जो है वो गंगा जी की सेवा में इस्तेमाल करते थे और बाकी 50% वो अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते थे। वो 50% मतलब प्राय कुछ भी नहीं था उसमें। और बड़े ईमानदार थे, कभी भी अपने ग्राहक को ठगाते नहीं थे, कभी भी धोखा नहीं देते थे, बड़े सही कीमत पर सब कुछ बेचते थे। तो निमाय पंडित महाप्रभु, तो उस समय निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अपने भक्ति की लीला आरंभ नहीं की थी। तो निमाय पंडित प्रति दिवस उनके पास आया करते थे और उनको छेड़ते थे, अरे श्रीधर मुझे ये तुम केले दे दो, कितना क्या कीमत है। तो जब श्रीधर कीमत बताते तो निमाय कहते अरे ये तो बहुत ज्यादा है कीमत। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम था, लेकिन फिर भी निमाय पंडित कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा कीमत तुमने लगा दी है, मुझे ये आधे में दे दो। अरे आधे में तो मैं नहीं दे सकता, मेरे तो बहुत नुकसान होगा। अरे आधा क्या, मुझे थोड़ा मुफ्त दे दो, तुम थोड़ा कुछ मुझे ये दे दो। इस प्रकार से वो हमेशा झगड़ा करते निमाय पंडित श्रीधर खोलावेचा के साथ। और कभी कभी श्रीधर खोलावेचा सोचते अब ये ब्राह्मण जो है बड़ा तेजस्वी है और बड़ा शक्तिशाली है, नौजवान है, इससे ज्यादा झगड़ा करेंगे, कहीं ये मुझे मारपीट करने आया मेरे पास तो बहुत खतरा है, तो फिर दे देते सब कुछ, केला जो भी कुछ है। वास्तव में श्रीधर को, इस नौजवान को, इन सब चीजें देने में बहुत आनंद आता था। हालांकि उस समय श्रीधर नहीं जानते थे कि यही निमाय पंडित उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन न जाने क्यों एक विशेष प्रकार का आकर्षण निमाय पंडित के प्रति उनके हृदय में हुआ करता था। तो ऐसे दिन बीत गए और एक दिन जब निमाय पंडित उनके साथ झगड़ा करने के लिए आए तो फिर श्रीधर कोलावेचा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे साथ आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, मैं इतना गरीब हूं और कम कीमत में कैसे मैं दे सकता हूं ये केले के पत्ते वगैरह। तो फिर निमाय पंडित कहने लगे नहीं श्रीधर, आप धोखा नहीं देना सारे समाज को, एक दिन मैं तुम्हारा रहस्य सब खोल के समाज के सामने प्रकाशित कर दूंगा। तुम तो बड़े धनी हो, तुम्हारे पास बहुत धन है जो तुमने छुपाया हुआ है। तो श्रीधर ने सोचा कि वो रुपए पैसे के धन की बात कर रहे हैं, सोने चांदी के धन की बात कर रहे हैं। कहने अरे नहीं नहीं मेरे पास क्या धन है, कुछ भी नहीं, नहीं श्रीधर एक दिन मैं सबको बतलाऊंगा कि तुम्हारे पास कितना बड़ा धन है। और एक दिन उन्होंने महाप्रकाश लीला के समय सबको दिखाया भी। श्रीधर खोलावेचा के पास कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ धन था। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर कोलवेचा भले भौतिक दृष्टि से एक बहुत गरीब व्यक्ति लग रहा हो, परंतु यह बहुत ही धनी। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं कभी कभी निर्धन होते हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण हैं, इसलिए वो सबसे बड़े धनी हैं। और इसलिए कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को अकिंचन वित्त कहती हैं कि वो अकिंचनों के धन है। वैसे जब भगवान के भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। परंतु श्री प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आता है किसी भौतिक लालसा से, भगवान के पास आता है कि मुझे ये धन दे दो, मुझे ये मेरे व्यवसाय में प्रगति करा दो, अच्छे पति अच्छे पत्नी दिला दो। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे समय हर एक चीज को उस व्यक्ति से छीन लेते हैं और ऐसी अवस्था में फिर वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर हो जाता है और भक्ति में आगे प्रगति कर लेता है। चैतन्य चरितामृत में इसी बात को, जिसका उल्लेख की श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अन्य कामे जोधिकारे कृष्ण रे भजन नामागित है तारे कृष्ण धैन स्वचरण। अन्य कामी मतलब जो कृष्ण कामी नहीं है, जो कृष्ण के अलावा और कुछ चाहता है, कोई अन्य वस्तु चाहता है, ऐसा व्यक्ति अगर कृष्ण का भजन करता है, अन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन, तो फिर क्या होता है, ना मागते हो कृष्ण तारे दैन स्वचरण। कृष्ण उस व्यक्ति को उनके स्वयं के चरण कमल प्रदान कर देते हैं, हालांकि उस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल नहीं मांगे थे। कृष्ण कहे आमा भाजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़े विष मागे ही बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहे, तो कृष्ण क्या कहते हैं, आमा भजे ये मेरा भजन कर रहा है, मागे विषय सुख, विशेष सुख को मांग रहा है मेरा भजन करके, अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ मूर्ख, अमृत को छोड़कर मेरी भक्ति के रस को छोड़कर वो इस इंद्रिय तृप्ति इस भोग के विष को चाह रहा है, इसलिए तो बड़ा मूर्ख है। आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय क्या होती वो स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाई वो। तो कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत मूर्ख है, मैं उसको अमृत दे सकता हूं लेकिन वो विष मांगने के लिए आया है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, आमी विज्ञ मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं ए मूर्ख विषय क्या नो दिबो, इस मूर्ख को मैं इस भोग के विषय को क्यों प्रदान करूं, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो, मेरे चरणों के अमृत को प्रदान करके उसको इंद्र तृप्ति भुला दूंगा मैं। तो ये भगवान की कृपा है। तो कोई भी अगर भगवान के पास आता है, चाहे उसके मन में भौतिक इच्छा हो या न हो, उसे कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को त्यागना नहीं चाहिए। अगर भौतिक इच्छा हो भी तो भगवान उस भौतिक इच्छा को खत्म कर देंगे, हृदय को शुद्ध कर देंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महाभारत में यह प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके चरण कमलों में पूरी तरह से आश्रित हैं, आपके सिवाय हमारे पास और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में क्या हुआ देखिए, हमारा राज्य हमसे छीन लिया गया, हमारे पत्नी का भरे सभा में अपमान हुआ, लाक्षाग्रह में हमारे ही भाइयों ने हमें मार डालने का प्रयास किया, क्या नहीं बीता है हमारे साथ? तो ये कैसे है, जब हम आपके ऊपर निर्भर हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था और उसी बात का बात की पुष्टि वो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में करते हैं। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तत्तनम शनै, कि हे युधिष्ठिर, जिनके ऊपर मेरी अनुकंपा या मेरी कृपा रहती है तो मैं शनै उनका सब कुछ हरण कर लेता हूं, और जब सब कुछ उनका हरण कर लेता हूं उनको मैं खुद अपने आप प्रदान कर देता हूं, तो फिर वो मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, भौतिक धन को भौतिक आश्रय को भूल जाते हैं और पूरी तरह से वो मेरे आश्रय में आ जाते हैं। श्री प्रभुपाद अपने निजी जीवन के उदाहरण को देते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 25 साल का नौजवान था तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि तुम भी इस चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के आंदोलन में शामिल हो जाओ और प्रचार करो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बहुत धन कमाऊंगा और इसको प्रचार के कार्य में मैं लगाऊंगा। और फिर एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं बहुत ही धनी व्यक्ति होने वाला हूं। आखिर प्रभुपाद तो हुए ना, आगे चलकर बहुत धनी हुए ना, इतने धनी हुए कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 40 रुपए अपने जेब में थे पहले और बाद में 108 मंदिर उनके हो गए, इतने हजारों की संख्या में शिष्य हो गए, लाखों करोड़ों डॉलर उनके पास आ गए, उनके वश में थे। तो देखिए ऐसा कौन सा व्यापारी है जो 40 रुपए से करोड़ों डॉलर तक 12 साल में कर पाए। तो प्रभुपाद कहने लगे कि ज्योतिष ने बताया था कि मैं बहुत धनी आदमी बनने वाला हूं, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और महाप्रभु के आंदोलन में इस धन को लगाऊंगा। तो फिर मैंने पहले एक रसायन के कारखाने में नौकरी करना शुरू किया, मैनेजर था वहां पर। फिर मैंने खुद का कारखाना खोल दिया और मेरा कारखाना अच्छी तरह से चल रहा था, अच्छा मैं कमाई कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे से मेरा सब कुछ खत्म हो गया और एक दिन मेरा व्यवसाय जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया। और जब मैं पूरी तरह से सड़क पे आ गया, बर्बाद हो गया, तब मैंने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर, और मैं समझ गया कि कृष्ण ही मेरे एकमात्र धन है। फिर मैं भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया। इस प्रकार से मैंने समझ लिया कि वास्तव में मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने पाया ही है, कृष्ण के चरण कमलों को पाया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताए रहे थे कि जब मैं संन्यास ले रहा था तो मेरे मन में विचार था कि मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को वगैरह रिश्तेदारों को मैं त्याग रहा हूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मैंने एक छोटा सा परिवार त्याग दिया, 5 बच्चों को त्याग दिया, लेकिन अब मेरे 10,000 बच्चे हैं जो इतने सुंदर ढंग से मेरा देखभाल कर रहे हैं, जो मेरे खुद के बच्चे शायद नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद कहने लगे, कृष्ण के शरण में जाने में कभी भी कोई नुकसान नहीं है। किसी को भी कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए या कृष्ण के शरण में जाने के लिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का सब कुछ हर तो लेते हैं, लेकिन भौतिक चीज हरण करने के बाद वो ऐसे एक अनमोल भेंट प्रदान करते हैं जिसकी तुलना नहीं की जाती। इसलिए यहां कुंती महारानी कहती है, नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते हैं सदैव, ये भौतिक चीजें ये तीन गुणों के भेंट होते हैं, पुरस्कार होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को इन तीन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, और जो उनके भक्त हैं उनको भी इन तीन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि भक्तों की संपत्ति है श्री कृष्ण जो कि आध्यात्मिक है। तो दोनों भगवान और भक्त दोनों ही निवृत्त गुण वृत्ति हैं, अर्थात इन भौतिक गुणों से पूरी तरह से निवृत्त है वो। इन तीन गुणों का प्रभाव कभी भी भगवान के ऊपर और उनके भक्तों के ऊपर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि भक्तों को केवल श्री कृष्ण का ज्ञान है और श्री कृष्ण को केवल भक्तों का ज्ञान है। इसलिए भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि से कहते हैं, साधो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम, मेरे हृदय में केवल साधु है, मेरे भक्त निवास करते हैं, और मेरे भक्तों के हृदय में केवल मैं निवास करता हूं। मद अन्यत्ते न जानन्ति न अहम तेभ्यः मनागपि, मेरे भक्त मेरे सिवाय किसी भी और चीज को नहीं जानते, और मैं भी मनागपि लेश मात्र भी किसी अन्य चीज को नहीं जानता मेरे भक्तों के अलावा। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है भगवान और उनके भक्तों के बीच में। इसलिए भगवान भक्त की संपत्ति है और भगवान केवल भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और किसी के साथ में नहीं, क्योंकि भगवान आत्माराम हैं, आत्मतुष्ट हैं। इसलिए यहां कुंती महारानी कहती हैं आत्मारामाय शांताय, और इसीलिए वो कैवल्य पते नमः अद्वैतवादियों के भी स्वामी हैं, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है जिसमें अद्वैतवादी लोग लीन होना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज मात्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अद्वैतवादियों का कैवल्य के प्राप्ति करने वाले लोगों के पति भी हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी यहां पर सुंदर प्रार्थना करती है। तो आज के प्रवचन का सार यही है कि भगवान के भक्त अकिंचन हैं, परंतु श्री कृष्ण अकिंचन वित्त हैं, उनके धन हैं। इसलिए वास्तव में भक्त कभी भी निर्धन नहीं होता, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके पास स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी हो? 9 बज गए वैसे। हाँ जी, प्रश्न ये है कि यहाँ बताया जाता है कि निवृत्त गुण वृत्ति भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं, परंतु कई ऐसे भक्त हमारे संस्था में हैं जो कई सालों के बाद भी पथभ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जबकि वो ये समझ ले तत्वतः कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। जब तक वो ये नहीं समझते कि मैं अकिंचन हूं, जब तक हम अकिंचन नहीं हो जाते और जब तक हम ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अकिंचन वित्त हैं, तब जब तक इस विचार में हम परिपक्व नहीं हो जाते तब तक खतरा होता है पतन होने का। लेकिन जब हम अन्य सारे आश्रयों को दृढ़ता पूर्वक त्यागते हैं और केवल कृष्ण मात्र का ही शरण लेते हैं, तो फिर हमारी शरणागति शाश्वत रूप से बनी रहेगी। लेकिन भक्त को चाहिए कि वो सदैव सतर्क रहे कि कहीं वो अपने शरणागति की परीक्षा करते रहे कि कहीं मेरी शरणागति झूठी शरणागति नहीं, वास्तव में मैंने मैं अकिंचन हूं या नहीं, शरण मैं किसका ले रहा हूं, मेरे धन का ले रहा हूं, मेरे परिवार के सदस्यों का ले रहा हूं, या डॉक्टर का ले रहा हूं, या किसका ले रहा हूं। तो सदैव हमारे हृदय में हमें परीक्षा करनी चाहिए कि मेरी शरणागति कितनी तीव्र है। और कोई प्रश्न? कृष्ण तत्व तो मालूम था उनको, मालूम होते हुए भी पथभ्रष्ट हुए, क्योंकि माया तो बहुत शक्तिशाली है। तत्व मालूम है लेकिन उस तत्व का पचन पूरी तरह से नहीं हुआ अभी तक। भोजन तो ले रहे हैं लेकिन भोजन का पचन होना भी आवश्यक है। जब भोजन का पचन हो जाता है फिर वास्तव में शरीर में पोषण आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब तक हम अकिंचन नहीं बनते पूरी तरह से, तब तक हमेशा एक खतरा रहता है कि किसी न किसी समय हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए भक्त को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। भले वो सब जाने, शास्त्रों को अच्छी तरह से जाने, श्लोक सारे कंठस्थ हों उसको, लेकिन फिर भी हर क्षण भक्त को सावधान रहना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौ प्रेमानंदे।